हेलो
सलाम अप्पू।
हाँ मेरे बेटे,
अम्मी मुझे देर तक जागने नहीं दे रही।
रात के 10 बज रहे हैं बेटा, सो जाओ।
मुझे एक्सबॉक्स चाहिए।
ला के तुम्हारे कमरे में रख दूंगा, सुबह उठ के देख लेना।
अभी चाहिए।
मैंने कहा ना, रिसीवर अपनी अम्मी को देना।
ये लीजिए अम्मी।
हेलो सलाम।
वालेकुम सलाम। मिसम को जागने दो, मैं
उसका तोहफा लेकर आ रहा हूँ।
पता है कितना बज रहा है? आप कहाँ हैं?
कहाँ होना चाहिए, काम पर हूँ।
रात किस टाइम?
काम में दिन और रात नहीं होता शाइस्ता।
मिसम को जागने दो,
मैं बस निकल ही रहा हूँ।
जी
हेलो, अस्सलाम वालेकुम वाहिद।
वालेकुम सलाम फराद भाई, ठीक हो?
ठीक हूँ। दुकान में हो?
हाँ भाई, क्यों क्या हुआ?
देखो मैं जल्दी में दुबई गया था, अपनी बीवी के लिए तोहफा लाना भूल गया। औरतों को तो तुम जानते ही हो, अगर खाली हाथ गया तो उल्टा लटका देगी मुझे। आपको एक जहमत देनी थी, कुछ खवातीन का सामान अलग करके रख दो, मैं अकेले लेता हूँ।
इसी वक्त चाहिए?
हाँ ना।
मेरे भाई मैं बंद कर रहा था।
मेहरबानी होगी वहीद, मेरी मौत और जिंदगी का मसला है।
ठीक है, क्या अलग रखूँ?
फर्क नहीं पड़ता, कपड़े परफ्यूम जूते सब चलेगा, बस ब्रांडेड होने चाहिए। ईरानी स्टिकर्स और कीमतें भी ऊपर से हटा दो। शुक्रिया।
ठीक है, कोई और खिदमत?
अरे हाँ, कपड़े हों तो फ्री साइज के हों और जूते हों तो 39 नंबर के।
सर आंखों पर इंतजाम हो जाएगा।
मेहरबानी, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ।
ठीक है, आइए आप।
बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बेटे तुमने मुझे डरा दिया, ये लो वही तोहफा है जो मैंने तुमसे कहा था। देखो अच्छा है नहीं? वही है ना? हाँ?
हाँ, बहुत अच्छा है, शुक्रिया अबू।
वही है ना? बिल्कुल
हाँ।
हाँ? तो फिर
ये किसका है?
एक बोसा दो। शाबाश।
ये किसका है?
ये शायदा का है,
मुझे देखना है।
नहीं हो सकता, वो खुद खोलेगी,
मुझे देखना
कल
है।
खुद खोलेगी।
बेटा तुमने क्या वादा किया था? उठो जाओ। शाबाश
अम्मी, थोड़ा सा
तुम्हारे हाथ से लेके छुपा दूंगी मैं, समझा के सो जाओ।
जाओ सो जाओ बेटा, जाओ।
ठीक है,
दो मुझे।
शब खैर।
बोसा ये लो, लो ये लेके जाओ। खाने को कुछ है?
खाना गर्म हो रहा है।
बच्चों मैंने टेबल लगा दी है,
बस अभी हम लेके आ रहे हैं बाकी के बर्तन।
जल्दी से चीजें ले आओ, खाना कहीं ठंडा ना हो जाए। बहू ध्यान से लाना
जी। अच्छा
हाँ, ऐसे ही ले आओ, कहीं खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ
जी जी, ला रही।
काश तुम्हारे अब्बू लोग भी आज रात खाने पे यहाँ होते।
इंशाल्लाह उनको भी लाऊंगा दादा जान, ले आऊंगा।
लाओगे ना तो ये बहुत बड़ा काम होगा।
इंशाल्लाह ले आऊंगा।
हाँ ना, रात को तो घर नहीं जा सकते, तो यहीं रुकिए।
बहुत दिन हो गए कि अम्मी के घर नहीं गए।
किसी और दिन चले जाएं, आज रात यहीं रहें। बड़ा अरसा हो गया इस घर में दादा जान के साथ कोई नहीं रुका है।
कसम से हम मजीद जहमत नहीं देना चाहते, हमें मजीद शर्मिंदा ना करें आप।
मेहदी बेटा, हमने तो अभी जी भर के तुम लोगों को देखा नहीं। मेहरान भी चला गया, कम कम संग हम आप रुके।
हाँ बेटा, यहीं रुके, हमीद का कमरा आपके लिए सेट करते हैं, रात को वहीं सो जाएं।
कहाँ?
हमीद के कमरे में ना, वो खाली है, वहीं पर सो जाएंगे।
क्या किस्मत है, हमें तो वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। दरवाजे को ताला लगा के चाबी अपनी जेब में डाल देते हैं, हम कहीं उस कमरे में ना चले जाएं।
सच में?
ये क्या कह रही है बहदी। मैं इसलिए चाबी अपने पास रखता हूँ कि वहाँ पर नमाज पढ़ता हूँ, डरता हूँ कि चाबी गुम न कर दूं।
आप सही कह रहे हैं,
आप कहेंगे और हम मान जाएंगे।
मेहदी बेटा आ जाओ खाना खाने, जल्दी से दस्तरखान पर आ जाओ।
जी 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 हाँ,
सब कुछ सही से रख दिया और मैं भी तुम्हारी मदद करती
हूँ। ठीक है दादी अम्मी।
हाँ शाबाश बेटा, तुम तो बड़ा अच्छा और फुर्ती से काम करती हो, क्या बात है तुम्हारी तो।
शुक्रिया।
सलाम अलैकुम नैरी साहब, फरमाइए। मैं कितने बजे वहाँ हूँ? ठीक है, मैं उसी टाइम आ जाऊँगा। खुदा हाफिज। आइए दादा जान, आइए आइए आइए
आइए। नेमत साहब अब आप भी जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। आ जाओ बेटा मेहदी, तुम भी आ जाओ, बैठिए।
बैठ जाइए आप लोग भी, बैठ जाइए।
मेहदी हमारे पास
बैठिए, बैठिए, तशरीफ रखिए।
शुक्रिया।
आ जाओ बेटा,
आओ मेहदी बेटा, आ जाओ।
बैठो बेटा यहाँ बैठो।
मैं भी आ रहा हूँ बस अभी।
क्या हो गया? चलो शुरू करो।
फातिमा बच्चों के लिए खाना निकाल दो।
आप ले मेहरान, तुम आओ।
वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
देखो इस तरह बात करो कि अम्मी न समझे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ,
वो समझते हैं मैं इस्फहान में हूँ।
देखो नैयरीन फोन किया था।
हाँ हाँ ठीक।
उसने कल ऑफिस में बुलाया है सुबह के टाइम पे।
देखा मैंने कहा था ना कहीं छुपा हुआ है।
नहीं भाई, कह रहा था कि आज सुबह सफर से आया।
ठीक है, मैं कल सुबह 10 बजे आपको लेने आऊँगा।
अम्मी वगैरह ठीक है?
जी।
अम्मी ने हमारे बारे में तुमसे कुछ पूछा?
नहीं, मैं अभी पहुँचा हूँ।
ओके फिर, चलो कल मिलेंगे। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कब आए?
अभी अभी।
मेहदी की क्या खबर है भाई?
ठीक है, कल आ जाएंगे।
ठीक।
हाँ मेहनूर सो रही है?
हाँ थक गई थी, सो गई। टाइम क्या हो रहा है मेरा?
11:10।
अरे भाई आधी रात हो गई और ये लड़की नहीं आई।
कौन?
परस्तू, तुम्हारी भाभी। तुम्हें पता है कि इस अरसे में जब घर से जाती थी तो कहाँ जाती थी?
कहाँ जाती?
मुनीरी वाले घर, उमा साहिबा के यहाँ।
बच्चे की खातिर?
नहीं, बच्चे के बहाने से। अगर बार डॉक्टर की होती तो हमारी अपनी रोड पे भी तो डॉक्टर है, तलाश करके हुमा को ढूंढना है ताकि हमें तंग करे।
छोड़िए अम्मी जान, परसु ऐसी कोई आदमी नहीं है, आप भी ना।
नहीं बिल्कुल ऐसी आदमी नहीं है वो, बस ढूंढ ढूंढ के उसने हुमा को निकाल लिया।
अम्मी सब लोग चाहते हैं कि डॉक्टर उनका अपना रिश्तेदार हो और आप कहते हैं कि परायों के पास जाए। सलाम अलैकुम अब्बू जान, माफ कीजिएगा ज़हमत नहीं देंगे।
सुनो मेहरान, मैं कहती हूँ एक फोन करके देखो ये लड़की कहाँ गई है, जाके ले आओ, कल मेहदी आएगा तो उसे नहीं पाके बहुत नाराज होगा।
अम्मी रात के 11 बज रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, इतनी रात किसके लिए फोन?
तो उसके मोबाइल पे फोन करो।
मैं फोन नहीं करूंगा।
सलाम अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान।
मोहसिन साहब, मेहरान से कहें कि फोन करके देखे ये लड़की कहाँ है, कल सुबह मेहदी आएगा और देखेगा कि बीवी नहीं है तो नाराज होगा।
तुमने ही तो कहा था यहाँ कदम नहीं रखना।
अगर नहीं आना चाहती तो मेहदी को मालूम होना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता।
अम्मी जान मैं आधी रात को किसी को फोन नहीं करने वाला, बुरी बात है ना। हेलो
मेरी जबान घिस गई है इनको समझाते समझाते। मैं कहती हूँ उस कमरे में मत जाए, फिर भी आते ही उसी कमरे में घुस जाते हैं।
तो अब तो ये कमरा मेहरान और महनोश को दे दो ना।
मैं जो भी कहूँ आपके पास जवाब हाजिर होता है।
अरे क्यों इतना शोर कर रहे हैं, मैं सो रही हूँ ना। क्या मुसीबत, इस घर में कमरा भी नहीं है सोने को, कल सुबह यूनिवर्सिटी भी जा रहा है।
ऐसे मेहरान मेरी सुनो तो, मेहदी को बताए बगैर कागजात लेके चले आओ, खामोशी से वहाँ रख देंगे, काम हो जाएगा, फिर वापस रख देना।
शाबाश, मतलब चोरी करूँ ना।
अरे भाई तुम भी ना।
अरे तुम भी की बात ही नहीं है, मेहदी को बताए बगैर कागजात उठाना चोरी है।
और हाँ, उन साहब के पास अपना कोई ढंग का दफ्तर भी नहीं है, मोबाइल के जरिए काम अंजाम देते हैं।
तुम कैसे जानते हो?
उस दिन रेस्टोरेंट में जब आपसे बात करने बाहर चले गए थे तो मैंने उनसे कहा कि अपने ऑफिस का नंबर दीजिए, तो कहने लगे मेरे पास 2-3 नंबर है, उनसे काम चलाता हूँ मैं।
वैसे दफ्तर की क्या ज़रूरत है, दफ्तर लेने का बहुत खर्चा होता है मेरे भाई।
अरे छोड़ो यार, क्योंकि तुम लोग उसको लाए थे इसीलिए उसके तमाम कामों की तायद करते हो। जो लोग इस तरह काम करते हैं उनका अपना कोई परमानेंट दफ्तर नहीं होता।
जो ऐसे काम करते हैं उनके पास न दफ्तर होते हैं न परमानेंट एड्रेस।
क्यों?
इसलिए कि कस्टमर टैक्स से बचने के लिए भाई मेरे सैकड़ों परेशानियां हैं।
ठीक है।
हेलो, अच्छा होल्ड करें, मैं ड्राइव कर रहा हूं। जी हाँ भाई, आज फोन किया था। नहीं, दोबारा कह रहे थे कि मीटिंग में। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो क्या करता मैं, फोन नंबर देता और कहता कि रिश्ता मांगने आ रहा हूँ, मुझे फोन करें। इसी तरह होता है ना। आज शाम को आकर बात करूँगा, अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी अम्मी से कहूँगा कि वो खुद बात करें तुम्हारे अब्बू से। हाँ ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी गई थी? ठीक है, मुझे भी मेहदी के साथ किसी काम पे जाना है। ठीक है, नहीं भूलूंगा, फोन करूंगा। खुदा हाफिज।
माफ़ कीजिएगा फ़ानी साहब, फरहमन साहब आए हैं, अंदर आने को कहूँ?
हाँ अंदर भेज दो।
नयरी साहब को भी बुलवा दूँ?
कोई ना आए, तुम बस चाय लाने के लिए कह दो।
जी ठीक है।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम। आइए तशरीफ लाइए।
सलाम अलैकुम।
और कैसे हैं जनाब?
कैसे हैं?
सब खैरियत है ना?
तशरीफ लाइए।
वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से।
आइए तशरीफ लाइए। आइए।
शुक्रिया। आइए तशरीफ लाइए।
बैठिए। बहुत शुक्रिया।
अरे जहमत ना कीजिए आप।
कुछ नहीं, चाय भी अभी आ रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा मैं।
नहीं, बिल्कुल आप आराम से जी तशरीफ रखिए।
बैठिए। जनाब हम आपके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए हैं, आपसे वादा किया था लेकिन वादे पर नहीं ठहर सके।
काश फानी साहब आपने कम से कम हमें बता दिया होता तो हम चेक बैंक में ना ले जाते।
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فرض صاحب چھوڑ دیے, میں خود کر دوں گا.
جی سر.
زحمت کیا آپ نے؟
کوئی بات نہیں سر.
کیا بتاؤں, مجھے خود بھی اس بات کا علم ہی نہیں تھا. یعنی میرے خیال سے اکاؤنٹ میں رقم کافی تھی, لیکن اس دوران ہمارے اکاؤنٹنٹ نے غلطی کر دی, مجھ سے
شکریہ.
پوچھے بغیر کچھ رقم کسی اور کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی, اور اس لیے یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ پیش آ گیا ہے. البتہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں چند دنوں کے اندر آپ کا چیک کیش کر دوں گا. اسے 10 دن سے پہلے کیش ہو جانا چاہیے تاکہ میرا اکاؤنٹ کا ریکارڈ خراب نہ ہو.
اصل میں فانی صاحب, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں مقروض ہوں اور صبر نہیں کر سکتا.
جو پیسے میں نے آپ کو دیے تھے ان سے آپ نے قرض نہیں نمٹا ہے؟
صرف ایک حصہ میرا قرض اس سے کہیں زیادہ ہے. اس وقت میں بہت پریشان ہوں.
جانتا ہوں, کہا نا کہ میں بہت شرمندہ ہوں. بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 3-4 دنوں میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا.
اگر ممکن ہوتا تو میں انتظار کر لیتا, لیکن اس بات کا امکان بالکل نہیں ہے.
ارے بھائی مہدی صاحب, زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی بات ہے, اتنا سیریس نہ لیں.
ہاں یہی 2-4 دن اور 1 ہفتہ ہی ہے جو آخر میں 1 مہینے اور سال میں بدل جاتے ہیں, یہی سب ہوتا ہے.
تو ٹھیک ہے, آپ کے اطمینان کے لیے میں بازار کے عرف کے حساب سے ان 300 ملین تومانوں کا پروفٹ اس وقت تک جب تک آپ کا چیک نقد ہو جائے آپ کو دوں گا. چیک جتنا لیٹ کیش ہوگا اتنا ہی میرا نقصان ہوگا.
دیکھیے فانی صاحب, میرے بھائی, میں نے آج تک نہ سود کا پیسہ کھایا نہ کھاؤں گا. اب تک آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں پیسے کے سود و زیاں وغیرہ کے پیچھے نہیں ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں سے لیا ہوا پیسہ واپس کر دوں اور جلد سے جلد اپنے کام میں لگ جاؤں.
ارے بھائی مہدی صاحب, آپ بھی تو بہت ضدی ہیں. میں نے کہا اس وقت میرے پاس نہیں ہے.
تو آپ کسی اور سے قرض لے کر ہمارے چیک نقد کروا دیں اور وہی سود جو ہمیں دینا چاہتے ہیں اسے دے دیں.
میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں جوان, جب کسی بڑے کے ساتھ باہر آتے ہو تو اس کی بات بیچ میں مت کاٹو.
میں کبھی بھی اپنے بھائی کی بات پر بات نہیں کرتا. یہ بات بھی اگر کی تو یہ میرے بھائی کی بات تھی, ہے نا بھائی؟
اصل میں فانی صاحب, یہ ورک شاپ مہران کی بھی ہے, یعنی ہماری فیملی کی ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ میں اکیلے اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا, اسی لیے میں انتظار بھی نہیں کر پا رہا ہوں.
ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں میں کیا کروں.
آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں.
مہدی صاحب میں شرمندہ ہوں, لیکن میں آئندہ 10 دن تک یہ چیک کیش نہیں کر سکتا.
آپ تو ابھی کہہ رہے تھے 1 ہفتہ.
یعنی مسئلہ صرف 3 دن کا ہے؟
جی میں نے عرض کیا نا, یہی 3 دن بڑھ کر 1 مہینہ اور اس کے بعد 1 سال اور آئندہ سال بن جاتے ہیں.
فانی صاحب, میں نے پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا کہ میں چیک اپ سودا نہیں کرتا, چونکہ انہی مسائل سے ڈرتا تھا.
ہاں لیکن جب میں نے ورک شاپ کی قیمت 50 ملین بڑھا دی تو آپ کا ڈر ختم ہو گیا.
ہم نے پراپرٹی اصل قیمت سے کم پر رکھی تاکہ جلدی بکے, ورنہ اس کی اصل قیمت اس سے بہت بڑھ کر ہے جو آپ کو بیچی ہے.
نہیں فانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے لالچ کیا. انسان ہے نا, غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اب اپنی غلطی کے ازالے کے لیے چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کل سے ورک شاپ کسی اور کو بیچنے کے لیے رکھتا ہوں.
آپ تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں, یہ اجازت بھی صرف تکلف کی حد تک لے رہے ہیں.
نہیں ہے اخلاقاً, کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر 1 بھی چیک پاس نہیں ہوا تو معاملے کو اسی وقت فسخ سمجھو. تو اب جب آپ نے اپنے عہد پر عمل نہیں کیا تو شرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے یہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے.
ایسا ہاتھ سے لکھا گیا کانٹریکٹ کہ جس کا 1 گواہ آپ کے والد اور دوسرا آپ کا بھائی ہو, پہلے ہی دن سے بے اعتبار تھا. مہدی صاحب, میں نے اگر آپ کو 200 ملین تومان دیا تو وہ صرف بازار میں آپ اور آپ کے والد کی حیثیت کی وجہ سے تھا, نہ کہ کانٹریکٹ پر اعتماد کی وجہ سے.
فانی صاحب آپ بے فکر رہیں, میں نے جس دن ورک شاپ بیچی اسی دن آپ کی پوری رقم واپس کر دوں گا.
بہت شکریہ. اچھا ہوا جو آپ نے بتا دیا, میں تو آپ کے غصے کو دیکھ کر ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ 200 ملین آپ تاوان کی مد میں بھی واپس نہ کریں.
یہ بات زیادہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, आपने वाकई हमें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम तावान लेने वाले लोग नहीं।
देखो जनाब, मैंने आपको 200 मिलियन दिए जिनसे आपने अपने कर्ज वगैरह निपटाए और वर्कशॉप भी आपके ही कब्जे में थी, अब भी अपनी मर्जी से बेचना चाहते हैं, मैं किस चीज़ का दावा अदा करूँ?
देखिए फानी साहब, इन चंद दिनों में जो आपने हमारा टाइम ज़ाया किया, शायद कोई ग्राहक आके नकद पैसे देकर ज़मीन ले जाता और अपनी बात पर अमल करता, इस तरह रकम हमारी जेब में होती और आना जाना भी ना होता।
ये सब शायद और मुमकिनात की बातें हैं। मेहदी साहब, कहीं वाकई तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इन 10 दिनों में जो मैंने आपसे मोहलत मांगी है, कोई नकद ग्राहक आ जाएगा और आपसे ये जगह खरीद लेगा, इसलिए आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं?
खुदा ने चाहा तो मिल जाएगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे आपने मुझसे लिए उससे अपने कर्ज अदा कर दिए और वर्कशॉप बेचने का इरादा तय कर दिया हो? हाँ, और मेरे चेक का बाउंस होना एक बहाना हो ताकि मामला फंस कर सको?
ये क्या कह रहे हैं फानी साहब, मैंने अर्ज किया कि मेरे कर्ज बहुत ज्यादा है, मैं चाहूं भी तो इस वर्कशॉप को नहीं रोक सकता अपने पास।
ठीक है ठीक है, अगर ऐसा है और आप सच कह रहे हैं तो एक मामला कर लेते हैं। देखिए, अगर इन 10 दिनों में जो मैंने आपसे मोहलत मांगी है आप अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त कर सके तो मेरा पैसा दे देंगे, अगर नहीं कर सके और मैंने भी चेक नकद करा लिया तो हमारा बीच का सौदा बाकी रहेगा, ठीक है?
अगर अगले चेक्स में भी इसी तरह की मुश्किल पेश आई उस वक्त क्या होगा?
आप चाय पिए?
नहीं चाहता।
इंशाल्लाह इस महीने में मेरे हाथ इतना पैसा आने वाला है कि इस बात का कभी इम्कान है कि मैं आपका सारा पैसा इकट्ठा अदा करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ।
आपकी तारीखें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, आपने पहले कहा 3-4 दिन, उसके बाद का एक हफ्ता, फिर का 10 दिन और अब 1 महीने की बात कर रहे हैं।
ठीक है, अगर मैं इन 10 दिनों में वर्कशॉप बेच सका तो ठीक है, अगर आपकी रकम का बंदोबस्त हो गया और चेक नकद हो गए तो हमारा मामला अपनी जगह पे।
नोश फरमाइए चाय ठंडी ना।
माफ कीजिए मोहतरमा, चलते हैं।
खुदा हाफिज।
आपने गलती की, ये उन आदमियों में से जो खाली जेब के साथ बड़े बड़े मामलात करता है, आपको नहीं मानना चाहिए था।
क्या करते, तुमने देखा उसने क्या कहा? अब अगर हम न मानते तो वो ये समझता कि हम सौदा फंस करना चाहते हैं और चेक को बहाना बनाया है।
तो समझने दे।
मैंने तुझसे कोई वादा नहीं किया कि वर्कशॉप नहीं बेचूंगा, मैं अभी जाके डीलर से बिकवाने का कहता हूँ, इंशाल्लाह अच्छा ग्राहक मिल जाएगा और हम उसे बेच पाएंगे। फानी, अगर ऐसा आदमी हो जैसा तुम कह रहे हो तो वो भी मुझे नहीं लगता पैसे दे पाएगा। अच्छा चलो चलो,
पहले आप, पहले आप। लेकिन क्यों, क्या हुआ?
देख तो रहे हो ना, हमेशा कितने सोच में डूबे रहते हैं बेचारे, कब तक घर में काम करें? हमें जल्द कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी ताकि घर से बाहर निकलें, जब तक घर में काम करते हैं हमें भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, बेचारे क्या करें।
भाई घर जाएंगे?
नहीं, मैं जरा वर्कशॉप तक जाता हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा, अगर जाना है तो मैं उधर जाता हूँ।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
तकलीफ ना करो।
नहीं, जानते हैं मुझे जब भी कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो तो आपके पास आता हूँ।
साइड पे रोको, साइड पे रोको, देखो तो क्या हुआ, देखो तो ज़रा, अब बोलो बताओ क्या हुआ है।
भाईजान, जब भी अम्मी से बात करता हूँ, जब भी उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, बस एक नहीं कह देती हैं, मेरी बात को अहमियत नहीं देती।
तुम क्या कहना चाहते हो कि नहीं कहती?
भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, जब भी बात करता हूँ कहती हैं नहीं नहीं छोड़ो।
बहाना कर रहे
हैं। हाँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता ना मुकम्मल, अभी तो शादी नहीं रचानी है, सिर्फ अंगूठी पहनानी।
तो वो है कौन?
कौन है? असली साहब की बेटी।
अच्छा,
हमारे पुराने पड़ोसी।
ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, तुम अम्मी की तरफ से बेफिक्र रहो।
क्या कहने आपके।
चलो फिर ठीक है, चलो मैं यहीं उतर जाता हूँ, टैक्सी लेके मैं शुक्री के पास जाऊँगा, उसे बताऊँगा कि वर्कशॉप को बेचना है।
तो मैं पहुँचाता हूँ ना?
नहीं, वहाँ ट्रैफिक जोन है, जुर्माना लगेगा, चलता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ,
खुदा हाफिज़।
मुझसे कुछ फूल खरीद लीजिए।
नहीं चाहिए भाई।
मुझसे कुछ फूल खरीद लीजिए, ये फूल बहुत फ्रेश है, मुझसे ये फूल खरीद लीजिए।
कौन है?
अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा, नाजनीन साहिबा हैं?
एक मिनट, नाजनीन साहिबा आपको बुला रहे हैं।
कौन है?
एक लड़का एक गुलदस्ते के साथ।
अस्सलाम वालेकुम।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
डरो मत भाई, तुम्हारी अम्मी से बात करने आया हूँ।
मेहरान, हालात को मजीद ना बिगाड़ो, अब्बू को पता चले अकेले आए तो वो नाराज होंगे।
डरो नहीं, इस तरह से नाराज नहीं होंगे।
तुम्हें मजाक सूझ रहा है?
मुझे अंदर आने का नहीं कहोगी? नाजनीन, मैंने जितनी दफा फोन किया तुम्हारे अब्बू मीटिंग में थे, या वाकई में वो इतने मसरूफ हैं कि फोन का जवाब नहीं दे सकते, या जानते हैं कि मैंने किस लिए फोन किया है इसीलिए वो फोन नहीं उठाते। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करने आया हूँ, सोचा बेहतर है तुम्हारी अम्मी से बात करें, उनको राजी करें, वो बेहतर तरीके से तुम्हारे अब्बू से बात कर सकती हैं।
अम्मी ने कहा है कि पहले अब्बू से बात करो, उन्हें नहीं पता होगा तो वो नाराज होंगे।
इत्तेफाक से मेरे ख्याल में जाना, मेरे फोन का जवाब देते।
उन्हें कहाँ से पता होगा?
अरे मैंने उनके सेक्रेटरी को फोन करके बता दिया कि मुझे प्राइवेट काम है, उससे वाजे अल्फाज क्या होंगे।
मेहरान, अब्बू नाराज होंगे।
नाजनीन, मैं इस वक्त रिश्ता मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ आया हूँ उनसे इजाजत लेने। तुम्हारी अम्मी ने ही तो कहा था पहले इजाजत लें। अगर तुम्हारे अब्बू नाराज हो गए तो मैं कह दूंगा कि मैंने कई दफा फोन किया उन्हें, उन्होंने जवाब नहीं दिया। नाजनीन, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी अम्मी को आगे करेंगे, वो बेहतर होगा। नाराज नहीं होना। अंदर ना आऊं?
मासूमा साहिबा।
जी।
अम्मी कहाँ है?
अपने कमरे में।
प्लीज इनसे ये गुलदस्ता ले लीजिए।
जी ठीक है।
वालेकुम
अस्सलाम, खुशामदीद, बहुत शुक्रिया।
आप हॉल में बैठ के इंतजार करें, अम्मी आती हैं।
जो हुक्म हो।
मेहरान, अगर अम्मी ने कुछ कहा तो नाराज ना होना, पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि तरीका नहीं से।
नाराज होने की कौन सी बात है, आखिरकार हमें बात करनी है कि नहीं? नाजनीन, हम दोनों इस चोर छुपोली से थक चुके हैं, आखिरकार मुझे जानना पड़ेगा कि उनके क्या शरायत है। तुम भी इतनी फिक्र ना करो, जाओ अपनी अम्मी को बुलाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मैं मेहरान फरहमंद हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बाइस जहमत नहीं होगा।
नहीं, कोई बात नहीं, बस अगर पहले से इत्तला दे देते तो हम कुछ ठंडे गर्म का इंतजाम कर लेते।
असल में मैंने कई दफ़ा असली साहब को फ़ोन किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी, लगता है वो बहुत मसरूफ रहते हैं, इसीलिए मैंने नाजरीन साहिबा से कहा कि पहले आपके साथ बात कर लूं।
अच्छा, नाजरीन जानती थी कि तुम आ रहे हो?
नहीं, मैं नहीं जानती थी।
नहीं, उनको इल्म नहीं था, मैं अचानक आ गया यहाँ पर, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैंने असली साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सके, इसीलिए सोचा आपके पास आकर बात करूँ, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं बचा।
कोई बात नहीं, तशरीफ़ रखिए, बैठिए। बहरहाल माफ़ कीजिएगा, आपकी मुकम्मल पज़ीराई नहीं कर सकते।
नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस चंद मिनट आपका टाइम लेना चाहूँगा और फिर जहमत तमाम करता हूँ। अलबत्त जानता हूँ कि इस तरह बग़ैर इत्तला के आना ठीक नहीं है, लेकिन आपसे बात करना ज़रूरी था।
कोई बात नहीं। मासूमा
जी,
प्लीज़ वो चॉकलेट का बर्तन लेके आओ, एक गर्म चाय भी लेके आ जाओ, किचन को भी साफ़ कर दो, हॉल किसी और दिन
जी ठीक है।
हमने मंगल के दिन के लिए नौकरानी रखी है।
अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं शर्मिंदा हूँ, बिल्कुल पता नहीं था। बहरहाल यहाँ आने का मकसद ये था कि अगर हो सके आप असली साहब से बात करें, उनको राज़ी करें कि हम दोनों के रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएं। नाजनीन साहिबा ने मुझे बताया कि आप इस सिलसिले में बहुत हसास हैं कि मैं और नाजनीन यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से ना मिलें। अलबत्त मैं आपकी राय का मुकम्मल एहतराम करता हूँ और आपको हक देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन मुलाकातों को कानूनी हैसियत दी जाए ताकि हमारा मिलना आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो।
मैंने पहले भी नाजनीन को बताया है, पहले उसे अपने वालिद से बात करनी चाहिए।
ठीक है, लेकिन हम चाहते थे कि मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था कि आप हमारी तरफ से उनसे बात कर लें।
فرحمند صاحب، نازنین کے والد کو شاید آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہوں کہ جن کے جواب میرے پاس نہیں ہیں۔ ہم بس آپ کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ آپ اور نازنین ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔
آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھئے، میں حاضر ہوں۔
آپ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ابھی کیا؟ آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ پڑھائی مکمل ہونے تک رکتے کیوں نہیں؟
دیکھیے، ہماری فیملی کے لیے آج کل جو مشکلات پیش آئیں ان کی وجہ سے ہمارے حالات کچھ گڑبڑ چل رہے ہیں، لیکن میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے استدعا ہے کہ اجازت دیں یہ رشتہ طے ہو جائے تاکہ میں آپ کی فیملی کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں۔
مطمئن ہونے کی کون سی بات ہے نازنین؟ اگر آپ کو چاہتی ہے تو آپ کی مشکلات کے ختم ہونے تک آپ کا انتظار کرے گی۔
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر آپ کی فیملی سب کچھ جانتی ہو اور اس کو علم ہو تو ہم آسانی سے ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ میں آج آپ کی رائے جاننے آیا ہوں، آپ کے شرائط معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ شرائط جو بھی ہوں مجھے چشم بستہ قبول ہے۔
ہماری کوئی خاص شروط نہیں ہے فرحمند صاحب۔
تو میں آپ سے استدعا کر سکتا ہوں اصلی صاحب سے بات کریں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اصلی صاحب کو راضی کر سکتی ہیں۔
ناظرین کے ابا رخصتی سے پہلے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے مخالف ہیں۔
اب جو بھی شرط رکھیں گے مجھے منظور ہے، نکاح کر لیں، لیکن جب تک شادی نہیں ہوگی میں یہاں بالکل نہیں آؤں گا۔
فرحمند صاحب، میں اس طرح رشتے مانگنے کے حق میں نہیں ہوں، آپ کو اپنی فیملی کو بھی لے کے آنا ہے کہ نہیں؟
جی، ان کو ضرور لاؤں گا، اب تو میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ رشتہ مانگنے کے لیے اجازت لوں۔
مجھے یہ بتایا کہ آپ نے اپنی پڑھائی کیوں چھوڑی؟ ناظرین نے مجھے نہیں بتایا ہے، میری دوسری بیٹی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا ہے۔
اصل میں میں نے محسوس کیا کہ پڑھائی میرے کسی کام کی نہیں۔
اگر کچھ عرصے کے بعد شادی کے بارے میں بھی آپ کا ایسا نتیجہ ہو تو کیا ہوگا؟
نہیں، بالکل نہیں، یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ ایک انسان کیسے شادی کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے؟
کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ آپ ذرا معاشرے میں اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، شادی اگر اصولوں پر کی جائے تو اس طرح کے حالات پیش نہیں آتے۔ فرحمند صاحب
دیکھیے، نازنین کے ساتھ شادی کرنا میرا اپنا فیصلہ ہے، لیکن پڑھائی میرا فیصلہ نہیں ہے، امی کی خاطر میں یونیورسٹی کیا۔
تو امی کی عزت کی خاطر مکمل کیوں نہیں کر لیتے؟
اس طرح سے میرا پورا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔
تو آپ اس وقت کس کام میں مشغول ہیں؟
لیجیے۔
بہت بہت شکریہ۔
نوشی جان ہو۔
بہت بہت شکریہ۔
جی
شکریہ معصومہ۔
نوشے جان ہو۔
فی الحال تو کچھ نہیں، لیکن
نہیں پینی،
شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اصلی صاحبہ، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نازنین صاحبہ کو خوش رکھوں گا۔
ٹھیک ہے فرحمند صاحب، میں نازنین کے والد سے بات کروں گی۔ زیادہ اسٹرکٹ آدمی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اپنے بچوں کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے اسی لیے پہلے ہی اپنی شرطیں بتا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہترین راہ ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کو بھی یہی صحیح لگے گا۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نازنین کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور ہر قیمت پر اسے خوش رکھوں گا۔
لیجیے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔
اچھا، تو خلاصہ یہ کہ تم نے آخر کار جرات کی اور اس کے گھر چلے گئے۔
ہاں، لیکن پتہ نہیں کہ صحیح کام کیا یا غلط۔
تم تو کہہ رہے تھے اس کی ماں تمہیں پسند کرتی ہے۔
ہاں یار، اتفاق سے اس کی ماں کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسا کہ نظر آ رہا ہے اصلی صاحب واقعی اصلی ہیں۔
کسی بھی لڑکی کے باپ کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا داماد بد اخلاق نہ ہو، ڈھنگ کے کام کا مالک بھی ہو۔ بچتا ہے کام، وہ بھی اگر لون لے لیں گے تو نظام ہو جائے گا۔ وہ بھی وعدہ کرتا ہوں، اگر تمہاری جیب بھری ہوگی اور بزنس مین کے عنوان سے آگے بڑھو گے تو بغیر کسی شرط کے مان لیں گے۔
بزنس مین؟
ہنس کیوں رہے ہو تم؟ تم سمجھتے ہو کہ بزنس مین لوگ کیسے بنتے ہیں؟ سب کے پاس باپ دادا کی جائیداد تو نہیں ہوتی، بہت سے معماریان جیسے لوگوں سے کاروبار رکھتے ہیں اور ایک بڑا لون لے کے اس طرح کے کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ یقین کرو
سیاوش، یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ میں جا کے ورک شاپ سے کاغذات چرا لوں، تو تم بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ چونکہ مہدی کو علم ہے کہ مجھے کاغذات چاہیے، اسی لیے اس کی مکمل حفاظت کر رہا ہے۔
میرے پاس ایک اور پلان ہے، ایک ایسا پلان ہے کہ مہدی خود اپنے ہاتھ سے کاغذات لا کے معماریان کے حوالے کر دے گا۔
اچھا، وہ کیسے؟
ہاں، سعید کو تو جانتے ہو نا؟
سعید؟ کون سا سعید؟
سعید فرج پور، جس کے باپ کی پراپرٹی کی ایجنسی ہے، حال میں اپنے باپ کے ساتھ ایجنسی میں کام کرنے لگا ہے۔ سعید سے کہتے ہیں کہ مہدی کو فون کر کے کہے کہ اس نے ورک شاپ کے لیے ایک اچھا گائیڈ ڈھونڈ رہا ہے، معماریان کو آگے بڑھا دیں گے۔ اس سے کہیں گے کہ بلا کسی قید و شرط کے ورک شاپ کے سودا کے ہم ہی بھر لے، اس طرح سے مہدی کو بھی آگے کر لیں گے۔
اچھا، تو سعید کے باپ کا کیا کرو گے؟
وہاں کا بھی سوچ لیا ہے، اس سے ایسے ٹائم میں ملتے ہیں کہ اس کے باپ ایجنسی میں نہ ہو۔ یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، سب کچھ واضح ہے۔
اچھا پھر
میں ماریان سے کہیں گے کہ سودے کے عوض 10-15 دن کے بعد کا چیک لکھ دے، سعید جا کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا، اور مہدی کو دے دے گا میں ماریان بھی کے پاس جا کے اپنا چیک کیش کرا لے گا۔
لیکن مہدی اب چیک پر بیچنے کے لیے تیار نہیں۔
کیش نہ ہونے کی صورت میں تاوان رکھ دیں گے، مہدی بھی مان جائے گا، ہر روز کے لیے 5,00,000 تومان فائن بھر دے گا۔
اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟
15 دن کے بعد معماریان ہمارے لون کا انتظام کر دے گا، اور کاغذات کے اندر بھی کچھ نہیں ہوگا، تاکہ کاغذات واپس سعید کے حوالے کر دیے جائیں۔ سعید یہ مہدی کو دے کے کہے گا کہ معماریان کے پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا اور خریدار کو 7,50,000 تومان دینا ہے۔
اچھا پلان خود ہی بنایا پورا،
اور اس پہ خرابی کیا ہے؟
بیوقوف، نہ سعید تیار ہوگا اس کام پر، نہیں معماریان۔
کیوں نہیں راضی ہوگا؟ ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کروا رہے نا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خریدار کے پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، جیسے کیا نام تھا اس کا، فانی۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ معماریان تاوان بھی بھرے گا۔
معماریان؟
ہم بھریں گے، سعید اور معماریان دونوں پیسے کے بندے ہیں، سعید کو 1-2 ملین دے دیں گے، معماریان کا بھی کمیشن تھوڑا سا بڑھا دیں گے۔ میں جانتا ہوں یہ دونوں ہر حال میں مان جائیں گے۔
بھائی مہدی ایک چیک کے بدلے سودے پر راضی نہیں ہوں گے، نہیں کاغذات معماریان کو دیں گے۔
کاغذات معماریان کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ ایجنسی میں ایک محفوظ جگہ رکھوا دیں گے، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میرے پلان پر شک مت کرو تم، سعید سے کہیں گے کہ معماریان کی خوب تعریفیں کرے کہ بہت کھرا اور پیسے دار رہے، تاکہ مہدی کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے۔ اگر مہدی یقین کر لے کہ 15 دن کے بعد ورک شاپ کا پورا پیسہ ادا ہو جائے گا تو کیوں نہیں مانے گا بھائی میرے، سمجھا کرو بھائی میرے۔
دیکھو میں ایسا کام بالکل نہیں کر سکتا، مہدی کو پتہ چل گیا تو شرم سے ڈوب جاؤں گا۔
ارے کیسے پتہ چلے گا، کاغذات میں تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ دیکھو اس پورے معاملے میں مہدی کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ اس کے ورک شاپ کا معاملہ 15 دن اور لیٹ ہو جائے گا، 7,50,000 اس کو جرمانہ بھی ملے گا۔ بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو تم، ہم کو جلدی پیسے مل جائیں گے، فیوچر کے بارے میں سوچو، ہم بس پہلے بتا دے تم سے۔
سیاوش چھوڑو، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا۔
ٹھیک ہے تو میری نصیحت بھی سن لو، اصلی صاحبہ سے شادی کا خیال مکمل طور پر ذہن سے نکال دو، کیونکہ لڑکی کے باپ کی جگہ میں بھی ہوتا تو ایسے بے روزگار لڑکے کو کبھی اپنی بیٹی نہ دیتا جو اپنی جیب کا خرچہ بھی اپنے بھائی سے لیتا ہو۔
السلام علیکم، کیسی ہو سمانہ؟
وعلیکم السلام مہرنوش، تم ٹھیک ہو؟ آج ڈاکٹر یزدانی نے شاگردوں کے لیے اضافی کلاس رکھی ہے، کیا تم میری جگہ آفس آ سکتی ہو؟
میں آؤں، پر مجھے تو وہاں کا کوئی کام نہیں آتا۔
تم بے فکر رہو، میں سارے کام کر چکی ہوں، تم صرف آفس میں آ کر میری جگہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟
اچھا ٹھیک ہے، آتی ہوں۔
اوکے تو میں انتظار کروں گی، شکریہ۔
اچھا تو پھر ملتے ہیں، لیکن نہیں میں نہیں مل پائیں گے،
3:30 سے پہلے آ جانا۔ ہاں خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
خدا کا شکر ہے مان گئی۔
کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ مان جائیں گے تمہاری جگہ کوئی اور کھڑا ہو؟
مان گئے ہیں نا۔
مجھے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔
یاسری صاحبہ
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔
السلام علیکم، شکریہ۔
انجینئر روحی ہیں؟
نہیں ابھی نہیں آئے ہیں۔
ٹھیک، تو جب تمہارا مہمان چلا جائے تو میرے کمرے میں آنا۔
جی۔ اٹھو جاؤ نا۔
کیوں،
تمہیں کام نہیں ہے کیا؟
چلا جاؤں گا۔
بری بات ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرا شوہر بے روزگار ہے۔
یہاں سارے کام کرنے والی عورتیں ہیں، ہے نا؟
کیا بیوٹی پارلر ہے جس میں سارے خواتین ہوں؟
مجھے ٹرکانے والا جواب نہیں چاہیے۔
تو عجیب و غریب سوال نہ کرو تاکہ ٹرکانے والا جواب نہ سننا پڑے۔
تیار ہو گیا؟
جی۔ یہ لیجیے۔
آپ تو فی الحال رہیں گی نا؟
جی میں ہوں یہاں پر۔
شاید میں اس میں کچھ تبدیلی لاؤں۔
کوئی بات نہیں۔
یہ کون تھا؟ تم سے کیوں اپنا کام کرواتا ہے؟
کیا مطلب، یہ مارکیٹنگ آفیسر ہیں تو اپنے کام کس سے کروائیں گے؟
تم نے کہا تھا کہ تمہارا یہاں کچھ کام اور ہے۔
میں نے کب کہا؟ کہا تھا کہ میں مینجمنٹ کے شعبے میں ان کے کام انجام دوں گی،
और ये भी मार्केटिंग ऑफिसर हैं। किस लिए बिना वजह खुद को परेशान कर रहे हो?
अरे छोड़ो यार
इस्माइल, खुदा के लिए ऐसा ना करो। जानती हूँ कि मेरा काम करना तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ पैसा इकट्ठा करने काम पर आती हूँ। उठो उठो, जाओ अपने काम पर। असर को आना, साथ जाएंगे बाहर।
क्या हुआ तुम्हारे लिए? बाई से जहमत हूँ, मुझे दिखाओगी ना? मैंने उन लोग तुमसे कहा था कि उस दिन जो डायरेक्टर था वो कौन है मुझे दिखाना। अब तुम जरा, अब तुम करे कौन ये लोग आते जाते हैं? अब कौन है ये लोग बताओ ना। हाँ
ये क्या कह रहे हो इस्माइल? क्या मैं उन लोगों से कहूँ कि तुम्हारा काम अंजाम नहीं दूंगी, सिर्फ चीफ का काम अंजाम दूंगी?
हाँ उनके साथ फ्री ना हो, ऐसे में तो यहाँ के सब लोगों के काम तुमको करने पड़ेंगे, सब तुमसे काम करवाएंगे।
वो भी साफ कह देंगे कि नहीं हो सकता, काम नहीं करती तो जाओ,
जाए जहन्नम में, तो निकल जाओ।
हर जगह यही हाल है, मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती कि फलां के लिए काम करूंगी और फलां के लिए नहीं करूंगी।
अब जाओ तुम।
इस्माइल
मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो?
यासरी साहिबा
जी,
तुम्हारे मेहमान चले गए
जी।
इंजीनियर फखर का काम हो गया
जी।
ठीक है आओ, तुमसे काम है। ये लेटर लो और उसको टाइप करो
जी,
प्रिंट लेके तैयार करो, मैं मुंतजर रहूंगी।
अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज।
कहाँ जा रही हो?
समाना का कुछ काम पड़ गया है, मैं उसकी जगह ऑफिस जाऊंगी।
खाला के घर जाने का प्रोग्राम नहीं था?
ओहो मेरे खुदा, मैं तो भूल ही गई थी।
परसों भी देर से आई, नहीं जा सके थे, वो लोग नाराज हो जाएंगे। फोन करके समाना से कहो कि तुम नहीं आ सकती।
नहीं हो सकता अम्मी।
क्यों? मुझसे इनकार कर सकती, उससे इनकार नहीं कर सकती।
लेकिन
ठीक है भाई, ना जाओ ना जाओ, बिल्कुल ना जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
अम्मी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो समाना को काम से निकाल दिया जाएगा, बेचारी अपनी जहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। ठीक है
अच्छा छोड़ो ये बातें।
वाह वाह मेहदी आ गए, अब खाला के घर पे नहीं जाएंगे। मैं अभी फोन करती हूँ, कहूंगी कल आएंगे हम।
बीवी भी साथ है?
पता नहीं, मैंने नहीं देखा।
खुदा
हाफिज।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। कुछ पता है तुम्हारी बीवी कहाँ है?
क्या मतलब?
जानते हो वो तुम्हारी फूफी हुमा के मुनरिया वाले घर में गई है?
हाँ उसने बताया तो था।
और तुम भी मान गए?
अम्मी मेरे मानने की जरूरत नहीं थी, वो कह रही थी कि हुमा फूफी के साथ ज्यादा इजी रहती है, बच्चे की माँ वो है, उसको अपने डॉक्टर के इंतखाब करना है, मैं दखल नहीं
देता। क्या मतलब है कि उसे वहाँ आसानी है? उसे शहर में इतने सारे डॉक्टर छोड़ के हुमा मिली थी।
हाँ वो कहती है फूफी के पास ज्यादा इजी है।
सलाम अलैकुम बेटा।
अलैकुम सलाम।
क्या इस्फहान गए थे?
हाँ वहाँ एक आदमी से काम था।
आप कहाँ हैं?
अरे आपने उसे नहीं कहा था कि इस घर में ना है ना?
हाँ कहा था मैंने, हाँ मैंने ही कहा था, क्योंकि वो उन लोगों का दोबारा यहाँ आना जाना शुरू करना चाहती है।
बात को मत बदलिए अम्मी जान, आपने कहा था कि यहाँ ना आए या नहीं?
अच्छा तो ये कहो कि तुम भी जाके वहाँ सबक सीख के आए हो।
सीखने की क्या बात है अकरम, तुमने कल खुद ही उससे कहा था कि यहाँ नहीं आना।
मैंने गुस्से में एक बात कह दी थी, अब तुम लोग उसको बार बार दोहराते रहो।
अच्छा ठीक है, आपने कहा था ना कि गुस्से में कहा था, ठीक है मैं रात को जाके उसे लाता हूँ।
मेहदी बेटा उससे कहो कि उन लोगों ने हमें कितना तंग किया है, उस थप्पड़ का भी बताओ जो उसके कान पर मारा था, जिसकी वजह से आज तक कान सही नहीं हुआ है।
उन्होंने तुम्हारे साथ इतनी नेकियां की हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना, सिर्फ उनकी बुराइयां याद हैं।
कौन सी नेकी? कोई हो तो आप ही बता दें।
ये कि वर्कशॉप हमारे हवाले की, यही कि उस चेक के लिए उन्होंने कई मर्तबा माफी मांगी।
वर्कशॉप हमारे हवाले की तो कौन सा एहसान किया है? वर्कशॉप का दो बराबर पैसा हमीद ले उड़ा, जो घर हुमा को मिला वो भी आपका हक बनता था।
इतने साल गुजरने के बाद भी तुम्हारे दिल में कीने की आग जल रही है,
सुरैया ने एक गलत काम किया और अब्बू ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसे मार तो नहीं सकते थे ना?
उसको बाहर निकाला
और क्या? तुम बताओ क्या, सुरैया हमारे बाद उस घर से चली नहीं गई?
जी नहीं, आपने खुद कहा था कि सुरैया इस बात पर कि वर्कशॉप आपको दिया गया नाराज होकर उस घर से गई है।
ये कैसी बातें कर रही हो, किसने ऐसा कहा?
आपने खुद ही कहा था, आपने कहा था कि सुरैया इस बात पर नाराज हो गई कि वर्कशॉप आपको दी गई है और आप उसे मजबूरन हर महीने कुछ रकम दे रहे हैं।
वो एक अलग बात थी, सुरैया का इस वर्कशॉप में हिस्सा ही नहीं था। उसने विरासत में अपना पूरे का पूरा हिस्सा अब्बू से ले लिया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे मसाइल पेश आए कि मैंने सोचा है उसके अकाउंट में कुछ रकम डाल दूं। वो नहीं जानती थी कि ये रकम मैं डाल रहा हूं, और आखिर में तो कभी कभार।
अच्छा, तो वो भी आप भत्ता दे रहे थे?
कैसा भत्ते का पैसा, मैं अपनी मर्जी से दे रहा था।
खुदा के लिए बस कर, अब लड़ाई ना कीजिए, बस बहुत हो गया।
देखो मेहदी, अगर तुम्हारी बीवी यहाँ हमारे साथ रहना चाहती है तो हुमा का नाम नहीं लेगी, किसी और डॉक्टर का उसे इंतखाब करना होगा।
मैं उसे नहीं कह सकता, वो मेरी बीवी है, कोई असीर और नौकरानी नहीं कि उसे कहूं कि क्या करे और क्या ना करे। मैं उसकी जगह फैसला नहीं कर सकता किससे मिले किससे नहीं।
ठीक है, तो फिर उससे कह देना वहीं रुक जाए, यहां ना आए।
ठीक है, कह दूंगा।